أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد ہمارے اس کاریکرم کے سبھی درشکوں کو میرا پیار بھرا سلام. آج ہم اپنے اس کاریکرم میں روزے کے قضا اور کفارے کے بارے میں بات چیت آپ کے سامنے پیش کریں گے اور انہی دونوں چیزوں سے سمبندھت مسئلوں کو جہاں تک سمبھو ہو سکے گا آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. جیسا کہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایشور نے ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب کیا ہے کہ کم سے کم وہ رمضان کے ایک مہینے میں واجب روزوں کو رکھے. یعنی جو بھی بالغ اور عاقل ہے اور کوئی وشیش پریشانی اس کو نہیں ہے, اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ رمضان میں 29 یا 30 دن روزے بہرحال وہ رکھے. اب اگر کسی کارنوش کوئی ویکتی کسی روزے کو اس کے نشچت سمے پر نہیں رکھتا ہے, مثلا مان لیجئے اس کے اوپر رمضان میں روزے واجب تھے, رمضان میں پورا مہینہ یا کچھ دن اس نے ان روزوں کو نہیں رکھا, یا کوئی ایسا ویکتی تھا جس نے کسی وشیش دن کے لیے نظر کی تھی کہ اس دن وہ روزہ رکھے گا, اس دن نہیں رکھا, تو اس کے اوپر واجب یہ ہوتا ہے کہ جو وہ روزہ چھوڑ چکا ہے اس کے بدلے میں ایک دوسرا روزہ رکھے. یعنی اگر رمضان میں مان لیجئے کسی کے 10 روزے چھوٹ گئے ہیں تو اس کے اوپر واجب یہ ہے کہ 10 روزے دوبارہ رکھے ان کے استھان پر, اور وہ روزے جو ان استھانوں پر رکھے جا رہے ہیں انہی کو قضا روزے کہا جاتا ہے. یعنی یہ کہا جائے گا یہ رمضان کے قضا روزے ہیں جو انسان رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں رکھ رہا ہے. اس کے بعد کفارہ. کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ کفارہ اس پرکار کہا جائے کہ ایک پرکار کا یہ جرمانہ ہے اس چیز کے کارن جو اس نے روزہ باطل کر دیا ہے جو ایک مسلمان اور ایک بالغ اور عاقل کے اوپر واجب ہوتا ہے. اور کفارے تین پرکار کے ہو سکتے ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں. سب سے پہلا کفارہ یہ ہے کہ انسان ایک داس کو یا غلام کو آزاد کرے. دوسرا کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 روزے رکھے جس میں 31 روزے لگاتار رکھے جائیں گے, اس کے بعد باقی 29 روزوں کے بارے میں اس کو اختیار ہے کہ وہ لگاتار رکھے یا چھوڑ چھوڑ کے رکھے. اس کے بعد یہ ہے کہ 60 فقیروں کو وہ کھانا کھلائے, اس پرکار کہ وہ ایک ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کے کھا لیں, ایک تو یہ ہوا. یا پھر یہ کہ وہ ہر ایک فقیر کو اسلامی بھاشا میں کہا جائے تو ایک مد کھانا, مد کہتے ہیں 750 گرام کھانے کو, تو 750 گرام چاول روٹی یا اس پرکار کی چیزوں کو ایک ایک فقیر کو دے, ان 60 فقیروں میں یہ بانٹے, تو یہ اس کا کفارہ ہوا. یہ کفارے کب واجب ہوتے ہیں؟ جب انسان رمضان میں جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے یا روزہ رکھا ہے لیکن جان بوجھ کے روزوں کو توڑ دے. تو اگر جان بوجھ کے رمضان میں بنا کسی کارن کے روزہ نہیں رکھتا ہے یا بنا کسی کارن کے روزہ توڑ دیتا ہے تو انسان کے اوپر قضا تو واجب ہوتی ہی ہے, جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو قضا تو واجب ہے ہی, اس کے علاوہ اس کے اوپر ان تینوں میں سے کوئی ایک کفارہ اپنی شرطوں کے انوسار اس کے اوپر واجب ہوتا ہے, اس کے اوپر انیوار یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو دے. اس کے بعد مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب انسان کے اوپر کفارہ واجب ہو گیا تو کون سا کفارہ دیا جائے. تو جیسا کہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج جس سنسار میں آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ آج کے سمے میں داس یا داس پرتھا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام جس سمے سے آیا اسلام نے کچھ ایسے قانون بنائے جس کے کارن دھیرے دھیرے اس دنیا سے داس پرتھا کا نام و نشان مٹ گیا. اب چونکہ اس سنسار میں داس نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی لہٰذا داس اور غلام کو آزاد کرنے کا بھی کوئی ارتھ نہیں رہ جاتا ہے. اس لیے اب جس کے اوپر کفارہ واجب ہوتا ہے وہ دو کفاروں میں سے کوئی ایک کفارہ چنے گا, یا تو وہ 60 روزے رکھے گا جس میں سے 31 روزے ایک ساتھ رکھنا ہے, یا تو 60 فقیروں کو وہ کھانا کھلائے گا. اب اگر انسان 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہے या उनमें से इन तीनों में से कोई एक कुछ भी अंजाम नहीं दे सकता, यानी ना गुलाम आज़ाद कर सकता है, ना 60 रोज़े रख सकता है, और ना ही 60 फ़कीरों को खाना खिला सकता है। तो उसके ऊपर वाजिब यह है कि जितनी मात्रा में भी संभव हो वो फ़कीरों को खाना दे, और अगर कुछ भी नहीं कर सकता है तो इंसान को चाहिए कि वो अपने ईश्वर से माफ़ी मांगे और इस्तग़फ़ार करे। तो ये तो वो हो गया कि क्या करना है जब कफ़ारा वाजिब हो गया। अब अगर किसी इंसान के ऊपर कफ़ारा वाजिब हो गया, यानी उसने 2 महीने के रोज़े रखना थे, यानी हमने जैसे बताया आपके सामने कि कफ़ारे 3 प्रकार के होते हैं, एक कफ़ारा उनमें से ये है कि 60 रोज़े लगातार रखे। तो अगर किसी के कफ़ारे का दायित्व ये है कि वो 60 दिन तक रोज़े रखे, तो उसके लिए अनिवार्य और वाजिब ये है कि जो 31 रोज़े आरंभ में रख रहा है वो एक के बाद एक रखे, लगातार 31 रोज़े रखे। उसके बाद जो 29 रोज़े बचते हैं उसमें उसको ये अख्तियार दिया गया है कि वो चाहे तो एक साथ रख सकता है और चाहे तो अलग अलग रख सकता है। ये कफ़ारे और क़ज़ा के बारे में बात हुई जो हमने आपके सामने बयान की। उसके बाद कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर इंसान के ऊपर क़ज़ा तो वाजिब होती है, यानी अगर रोज़ा नहीं रखा क़ज़ा वाजिब है लेकिन कफ़ारा वाजिब नहीं होता है। वो कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर क़ज़ा वाजिब होती है और कफ़ारा नहीं वाजिब होता है, वो हम आपके सामने भी बयान करते हैं। सबसे पहला स्थान ये है कि अगर इंसान ने रमज़ान के दिनों में रोज़ा रख रखा है, और जैसा कि हमने आपको जब इस बारे में बात कर रहे थे वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़े को बातिल कर देती हैं या रोज़े को तोड़ देती हैं, उनमें से एक चीज़ ये थी कि अगर इंसान जानबूझकर उल्टी कर दे तो उसका रोज़ा टूट जाता है, वहाँ पर हमने आपको बताया था। अब ये बात यहाँ पर आती है कि अगर इंसान रमज़ान में रोज़ा रखे हुए है और रोज़े की स्थिति में जानबूझकर दिन में उल्टी कर देता है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। अब उसके ऊपर इस रोज़े की क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। यानी इस ऐसे तरह से अगर रोज़ा तोड़ा जा रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ केवल क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं है। दूसरा स्थान जहाँ पर क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं है, वो ये है कि इंसान रमज़ान के महीने में हालत जनाबत यानी जनाबत की स्थिति में रह जाए और इसी प्रकार एक दिन या कई दिन बीत जाएँ, यानी जनाबत की स्थिति थी उसके ऊपर गुस्ल वाजिब था उसने नहीं किया, अगर इसी प्रकार कई दिन गुजर जाते हैं तो उसके ऊपर वाजिब ये है कि इन दिनों में जो रोज़े छूट गए हैं उनकी क़ज़ा करे, लेकिन उसके ऊपर इन रोज़ों की कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। और वो तीसरा स्थान जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ा वाजिब होती कफ़ारा वाजिब नहीं होता है, वो ये कि इंसान मान लिया सहरी कर रहा था तो बिना इस बात की जांच पड़ताल किए कि सुबह हुई है या नहीं हुई है उसने कोई ऐसा कार्य कर दिया जिससे रोज़ा बातिल होता है, मसलन बिना जांच पड़ताल किए वो खाता रहा और उसके बाद उसको यह पता चला कि जिस समय वो खा रहा था उस समय सुबह हो चुकी थी, अज़ान का समय हो चुका था, तो अब चूँकि उसने खा लिया था लिहाजा उसका रोज़ा तो बातिल है, लेकिन अब उसके ऊपर वाजिब ये है कि उस रोज़े की क़ज़ा करे, लेकिन कफ़ारा उसके ऊपर उस रोज़े का वाजिब नहीं होगा। उसके बाद चौथा स्थान जहाँ पर क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं होता है, वो ये है कि इंसान किसी दूसरे की बात पर विश्वास करे, उस पर भरोसा करे। जैसे मान लीजिए कोई मैं रोज़ा रख रहा था, किसी व्यक्ति ने आके मुझसे ये कहा कि अभी सुबह नहीं हुई है, अभी सहरी का टाइम बाकी है, और मैं उसकी कहे हुए अनुसार उसकी बात पर विश्वास करते हुए मैं खाता रहा, उसके बाद मुझे पता चला कि जो उसने कहा था या वो गलती कर गया था, झूठ बोला था, लेकिन सुबह हो चुकी थी, तो अब चूंकि सुबह हो चुकी थी और मैं खा रहा था इसलिए मेरा रोज़ा बातिल है, लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी इस रोज़े की और कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। उसके बाद और कौन से ऐसे स्थान है जहाँ पर क़ज़ा वाजिब होती कफ़ारा वाजिब नहीं होता है, वो ऐसे स्थान है कि जब इंसान रमज़ान के महीने में यात्रा पर चला जाए, सफ़र पर चला जाए, अगर इंसान रमज़ान के महीने में यात्रा कर रहा है तो यात्रा के कारण उसके जो रोज़े क़ज़ा हुए हैं और जो उसने रोज़े छोड़े हैं उन रोज़ों की केवल उसको क़ज़ा करनी होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। मान लीजिए किसी के ऊपर ये वाजिब था कि 5 रोज़े उसने यात्रा में छोड़े थे, तो उसके बाद उसको आखिर में 5 ही रोज़े रखने होंगे, उसका 6ठा रोज़ा नहीं रखना होगा और ना ही कोई कफ़ारा उसको देना होगा। उसके बाद और जो स्थान है जहाँ पर रोज़े क़ज़ा वाजिब होती है कफ़ारा वाजिब नहीं होता है, ये मसला विशेष है महिलाओं से स्त्रियों से, कि अगर कोई स्त्री अपने मासिक धर्म के चक्र में है यानी मासिक धर्म देख रही है या निफास का खून देख रही है तो उस दिनों में यानी जो ये चीज़ चल रही है इन दिनों में उसके जितने भी रोज़े क़ज़ा होंगे रमज़ान के उसके बाद उसको रमज़ान के बाद इन रोज़ों की सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ा करनी होगी, इसको कफ़ारा देने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उसके ऊपर कोई कफ़ारा वाजिब होता है। उसके बाद एक और मरहला, एक और स्थान जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ा वाजिब होती है, वो ये है कि इंसान ऐसा हो जिसने कोई कोताही ना की हो और फिर भी मसला ना जान सका हो। तो मसला ना जान सकने के कारण अगर किसी का कोई रोज़ा बातिल हो जाता है, टूट जाता है रोज़ा, कोई ऐसा काम कर लेता है जिससे रोज़ा टूट जाता है, तो उसके ऊपर उस रोज़े की सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। उसके बाद और कौन से रोज़े हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ा वाजिब होते हैं? मसलन कोई इंसान रमज़ान के दिनों में बीमार हो गया है, तो जितने दिनों के रोज़े उसने बीमारी के दिनों में छोड़े हैं, बीमारी की अवधि जितनी लंबी थी, उन दिनों में जितने भी रोज़े तोड़े छोड़े गए हैं, उनको बीमारी के बाद, रमज़ान समाप्त होने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ केवल क़ज़ा करेगा, उसके ऊपर उन रोज़ों का कफ़ारा वाजिब नहीं है। तो ये वो चीज़ हुई जहाँ पर केवल क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं है। अब कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर इंसान के ऊपर दायित्व ये है कि ना वो क़ज़ा करेगा ना कफ़ारा देगा, सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए शर्त ये है कि वो हर दिन के लिए, यानी जितने दिन भी रोज़े छोड़े गए, हर दिन के लिए एक मुद, यानी वही 750 ग्राम खाना फ़कीर को देगा। वो कौन कौन से ऐसे स्थान हैं, हम आपके सामने अभी बयान करते हैं। सबसे पहला स्थान कि इंसान रमज़ान के दिनों में बीमार हो जाए, रमज़ान में बीमार हुआ और उस कारण उसके रोज़े छूट गए। अब ये बीमारी बढ़ती 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 इतनी पहुंच गई कि अगला रमज़ान आ गया, यानी अगले रमज़ान तक ये कभी भी स्वस्थ नहीं हो सका। तो अगर कोई इंसान एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान की अवधि भर बीमार रहे और बीच में स्वस्थ ना हो, तो इसके लिए जो पहले रमज़ान के रोज़े छूटे हैं उसके ऊपर उसकी क़ज़ा वाजिब नहीं है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको 750 ग्राम यानी एक मुद खाना फ़कीरों को देना होगा। उसके बाद और कौन सा स्थान जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 750 ग्राम खाना यानी एक मुद ताम देना होगा, वो क्या है कि इंसान बुढ़ापे के कारण रोज़ा न रख सकता हो और रोज़ा ऐसा हो कि, यानी अगर बुढ़ापा इतना हो गया कि अगर रोज़ा रखे तो बहुत ज़्यादा उसको परेशानी और कठिनाई का सामना होता हो रमज़ान में रोज़ा रखना, और रमज़ान के बाद भी चूँकि वो बूढ़ा है और परेशानी है, रोज़ा नहीं रख सकता है। तो अगर रमज़ान भर ऐसा नहीं कर सकता है और रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा भी नहीं कर सकता है, तो उसको चाहिए कि रमज़ान के जितने भी रोज़े थे, हर रोज़े के हर दिन के बराबर 750 ग्राम खाना फ़कीर को दे। यानी अगर रमज़ान में 30 रोज़े निकले हैं तो 30 750 ग्राम खाने फ़कीरों को उसे देना होंगे। उसके बाद एक और स्थान आता है जहाँ पर केवल 750 ग्राम खाना देना होगा, वो ये है कि अगर कोई इंसान ऐसा मरज़ है किसी इंसान के अंदर जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा प्यासा होता है, और अगर ऐसी स्थिति में रोज़ा रखे तो उसके लिए बहुत कठिनाई होती है। तो अगर इंसान को प्यास का मरज़ है और रोज़ा रखना उसके लिए बहुत कठिनाई का कारण बनता है, तो उसको चाहिए रमज़ान के बाद हर दिन के बदले में 1 750 ग्राम खाना फ़कीर को बांटे। तो ये वो स्थान थे जहाँ पर इंसान के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ एक मुद खाना फ़कीर को देना वाजिब था। तो कुछ स्थान और भी हैं जहाँ पर इंसान के ऊपर वाजिब होता है कि वो अपने रोज़े की क़ज़ा भी करे और उसके अलावा फ़कीर को 750 ग्राम खाना भी दे। यानी यहाँ पर दो दायित्व हैं, एक तो ये कि इंसान अपने रोज़े की क़ज़ा करे यानी जो रोज़े छूटे थे उनको अंजाम दे, उसके अलावा दूसरा दायित्व ये है कि वो हर दिन के बदले 750 ग्राम खाना भी अपने फ़कीर को दे। वो कौन कौन से स्थान हैं हम आपके सामने बयान करते हैं। इंसान किसी कारणवश, जैसे कि वो यात्रा पर चला गया, वो रोज़ा नहीं रख सका, मसलन मान लीजिए रमज़ान के दिनों में वो किसी यात्रा पर गया हुआ है और उस यात्रा के कारण कुछ दिन के उसने रोज़े नहीं रखे हैं, और उसके बाद चूँकि अब रोज़े नहीं रखे हैं लिहाजा इसके ऊपर क़ज़ा वाजिब होती है उन रोज़ों की। यानी अगर 5 दिन यात्रा पर गया है और 5 दिन उसने रोज़े नहीं रखे हैं, तो उसके ऊपर वाजिब ये है कि इन 5 रोज़ों की क़ज़ा करे। अब इसने रोज़े नहीं रखे और इतनी दिन तक क़ज़ा नहीं की कि अगला रमज़ान भी आ गया, यानी रमज़ान के बाद दूसरा रमज़ान आ गया, इसने क़ज़ा नहीं की, तो अब इसके पास चूँकि एक रमज़ान के बाद दूसरे रमज़ान के बीच में इसने क़ज़ा नहीं की है, लिहाजा उस रमज़ान के बाद इसके ऊपर दायित्व ये है कि उन 5 रोज़ों की क़ज़ा भी करे और हर दिन के बदले में एक मुत्ताम यानी वही 750 ग्राम खाना भी फ़कीर को दे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर उसने मसलन पहले छोड़ दिया था और दूसरे रमज़ान तक नहीं रखा था और उसके ऊपर एक मुत्ताम और कज़ा दोनों वाजिब हो गई है, तो अब अगर वो कई साल भी इन पांचों रोज़ों को नहीं रखता है, तो इन पांचों रोज़ों के ना रखने के कारण उसके ऊपर कफ़ारे यानी वो जो मुद दे रहा है, उस जो मुत्ताम दे रहा है, उसके ऊपर कोई इजाफ़ा नहीं होगा और ना ही कज़ा इजाफ़ा होगी। यानी क्या मतलब, यानी ऐसा नहीं कि अगर एक साल नहीं रखा था तो उसके ऊपर एक रोज़े के बदले में 750 ग्राम खाना वाजिब था, अब अगर दूसरे साल तक भी नहीं रखा है तो उसके ऊपर एक रोज़े के बदले में 2 750 ग्राम खाने वाजिब हो जाए। नहीं, चाहे जितने साल ना रखे उसके ऊपर एक ही 750 ग्राम खाना वाजिब रहेगा। उसके बाद दूसरा स्थान जहाँ पर इंसान के ऊपर वाजिब यह है कि वो अपने रोज़े कज़ा भी करे और उसके बदले में हर दिन के बदले में एक मुत्ताम भी दे, वो ये है कि इंसान रोज़े की कज़ा करने में कोताही कर जाए, यानी इसके ऊपर रोज़े की कज़ा वाजिब थी, उसने कोताही की और इतनी कोताही की कि जो समय था रोज़े कज़ा करने का वो बहुत कम हो गया। मसलन इंसान को 5 रोज़े रखने थे, वही मिसाल जो हमने आपके सामने पहले पेश की थी, 5 रोज़े रखने थे, उसे छोड़ता रहा छोड़ता रहा छोड़ता रहा छोड़ता रहा, इतना कम समय बचा कि अगले रमज़ान आने में केवल 5 ही दिन रह गए थे। इन 5 दिनों में उसको वह 5 रोज़े रखने थे, अब इन्हीं 5 दिनों में उसके लिए कोई और कारण पेश आ गया। मान लीजिए अगर यहीं पर हम अपनी महिलाओं को रखें तो इस प्रकार ये मसला हो सकता है। मसलन एक महिला के ऊपर रमज़ान के 5 रोज़ों की कज़ा वाजिब थी, अब उसने इतना छोड़ा इतना छोड़ा इतना छोड़ा कि आखिर के रमज़ान आने में सिर्फ 5 दिन रह गए। अब इन 5 दिनों में वो रोज़ा रखती, इससे पहले उसको मासिक धर्म आ गया, तो अब चूंकि इसने बहुत छोड़ा था और दूसरा कारण पेश आ गया, लिहाजा इसके बाद यानी रमज़ान जब नया रमज़ान आके समाप्त हो जाएगा उसके बाद वो पहले वाले रमज़ान के रोज़े की कज़ा भी करेगी और उसके अलावा हर दिन के बदले में 750 ग्राम खाना भी फ़कीर को देगी। ये वो मसले थे जो हमने आपके सामने बयान की। इसके बारे में कुछ और मसले भी हैं जो इंशाअल्लाह हम आपके सामने अपने अगले प्रोग्राम में अवश्य बयान करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी को ईश्वर के सुपुर्द करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।